الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ تابعین کے حالات دیکھ رہے ہیں اور آج جس تابعی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام کس نے نہیں سنا ہوا، سب ہی ان کو جانتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت حسن بصری. ان کا نام تو مشہور ہے مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا حسب نسب کیا تھا. اور یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے والدین غلام تھے، یعنی غلاموں کی اولاد میں سے تھے. ام المومنین حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کی لونڈی خیرہ کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس لونڈی سے بڑی محبت کرتی تھی. انہوں نے پیغام بھیجا کہ فوراً بچے کو لے کر میرے پاس آؤ. جب بچے کو دیکھا تو پوچھا کہ اے خیرہ کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا امی جان ابھی کچھ نہیں رکھا، میں نے آپ پہ چھوڑ دیا، جو نام آپ کو پسند ہو وہ اس کا رکھ دیں. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں. پھر ہاتھ اٹھائے اور اس بچے کے لیے دعا کی. ان کے جو والد تھے وہ حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے اور ان کا نام یسار تھا. اور حضرت زید بن ثابت بھی اپنے غلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حسن بن یسار جو تھے انہوں نے، جن کو اب ہم حسن بصری کہتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پائی، کیونکہ حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی ان کی والدہ، تو وہیں رہتے تھے. ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ کو بڑا لگاؤ تھا. جب کبھی ان کی لونڈی حضرت خیرہ کسی کام کے لیے باہر جاتی تھی تو اگر یہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ اس کو اپنی گود میں لے لیتی، ماں کی غیر حاضری میں اپنی چھاتی اس کے منہ کو لگا دیتی، اور اس طرح یہ بچہ پلا ان کی گود میں. حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میں امہات المومنین کے گھروں میں آنے جانے اور کھیل کود چہل پہل میں رہتا تھا اور تمام گھروں میں آنکھ کا تارا تھا. بعض اوقات میں اچھلتا کودتا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا اور مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جب کچھ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، جیسے حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، ابو موسیٰ اشعری سے، عبداللہ بن عمر سے، ابن عباس سے، انس بن مالک سے. اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ کرام کی صحبت میں یہ رہے اور ان سے علم لیتے رہے. جب 14 سال کے ہوئے تو ان کے والدین بصرہ موو ہو گئے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی. اس طرح سے ان کو بصرہ کی طرف منسوب کیا جانے لگا اور ان کو حسن بصری کہا جانے لگا. جن دنوں میں یہ بصرہ میں آباد ہوئے تھے تو وہ بہت علم اور فنون کا مرکز سمجھا جاتا تھا. وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام تابعین رہا کرتے تھے. یہ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حلقہ درس میں شامل ہوتے، ان سے تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، تجوید سیکھی، یہاں تک کہ بہت بڑے عالم دین بن گئے، فقیہ بن گئے. اور علم میں رسوخ کی وجہ سے لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے. لوگ ان کے پاس بیٹھ کے خاموشی سے ان کے بات سنتے جن سے ان کے دل موم ہو جاتے، گناہگار آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگتے. ان کی زبان سے ایسی حکمت اور دانش کی باتیں لوگ سننا پسند کرتے تھے اور رشک کرتے تھے، اور ہر دم ان کی سیرت کو اپنانے میں फख्र महसूस करते थे। इनका नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो गया था। लोग अपनी मजलिसों में इनका जिक्र खैर करते थे। हुक्मरान इनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। खालिद बिन सफवान बयान करते हैं कि मैं इराक के कदीम शहर हीरा में बनू उमैया के जरनैल मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक से मिला। उसने मुझसे पूछा, खालिद मुझे हसन बसरी के मुतालिक बताओ, मेरा ख्याल है कि तुम उसके मुतालिक बहुत अच्छा जानते हो। तो मैंने कहा, हाँ मैं उनके मुतालिक ज्यादा जानता हूँ, इसलिए कि मैं उनका पड़ोसी भी हूँ, उनका साथी भी हूँ, बल्कि मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूँ उनके बारे में। मैंने कहा, उनका बातिन जाहिर जैसा है, उनके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। ये नहीं कि बातें कुछ करें और काम कुछ और। जब वो किसी नेकी का हुक्म देते तो पहले खुद उस पर अमल करते हैं, जब किसी बुराई से रोकते हैं किसी को तो खुद उस बुराई के करीब नहीं जाते। दुनिया के माल और मता से बिल्कुल बेनियाज हैं। इनके पास इल्म और तकवा का खजाना है। वो चीजें जिनकी तरफ लोग दीवाना वार लपकते हैं, उनसे इनको कोई सरोकार नहीं, और वो लोगों के महबूब नजर है। तो तब उस जरनेल ने कहा था कि भला वो कौम कैसे गुमराह हो सकती है जिसमें हसन बसरी जैसी अजीम शख्सियत मौजूद हो। जब हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर बना तो उसने अपने दौरे हकूमत में बड़ा जुल्म और तशद्दुद किया, इंतहा कर दी थी। और हसन बसरी उन चंद लोगों में से जित थे जिन्होंने उसके जुल्म के को आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की, मुखालफत की उसकी। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक आलीशान महल तामीर करवाया। जब उस महल की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसने इफ्तिताही तकरीब में लोगों को दावतें आम दे दी कि जो चाहे आए और मेरे महल को देखे और उसकी सैर करे और उसकी तारीफें करें। हसन बसरी के दिल में ख्याल आया कि ये मौका अच्छा है कि लोगों को वाज किया जाए, नसीहत की जाए। ये दुनिया का माल है और अल्लाह के यहाँ इससे बेहतर चीजें हैं। तो वहां पहुंच गए, देखा कि लोग आलीशान महल को देख रहे हैं चारों तरफ से और फरेफ्ता हो रहे हैं महल के ऊपर। तो आपने लोगों को झंझोड़ने के लिए कहा, हमें ये मालूम है कि फिरौन ने इससे भी ज्यादा मजबूत, खूबसूरत और आलीशान महलात तामीर किए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हलाक कर दिया और उसके महलात को भी बर्बाद कर दिया। काश हज्जाज को ये मालूम हो कि आसमान वाला उससे नाराज है और जमीन वाले वालों ने उसको धोखे में रखा हुआ। वो पूरे जोश से हज्जाज के खिलाफ बोल रहे थे, यहां तक कि लोगों में से एक आदमी ने हज्जाज के इंतकामी जज्बे से खौफजदा होकर इनसे कहा कि अब बस करें, इतना ही काफी है, क्यों अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। हसन बसरी ने फरमाया, मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अहले इल्म से ये अहद लिया है कि वो जालिम के मुंह पर बगैर किसी खौफ के हक बात करें। दूसरे दिन हज्जाज को ये पता चला कि इस तरह से इन्होंने बोला है, तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने गजबनाक अंदाज में अपने अहले मजलिस से कहा कि लानत है तुम्हारे ऊपर, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, कितने अफसोस की बात है, बसरे का एक गुलाम बिन गुलाम लोगों में बेलगाम जो मर्जी मेरे खिलाफ बोल रहा है और तुम में से कोई ऐसा नहीं कि उसकी जुबान को रोके। अल्लाह की कसम, अब मैं इसका खून तुम्हें पिला के रहूंगा, इसे आज ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। फिर इसने तलवार मंगवाई, चमड़े की चादर मंगवाई और ये दोनों चीजें फौरन उसकी खिदमत में पेश की गई। उसने जल्लाद को बुलाया, वो भी आके खड़ा हो गया। फिर अपने मुहाफजों को कहा कि जाके हसन बसरी को गिरफ्तार करके लाओ। थोड़ी देर में ही वो उनको पकड़ के ले आए। मंजर बड़ा ही खौफनाक था, क्योंकि हज्जाज ने तो बड़े बड़े सहाबा कराम को शहीद करा दिया था, ताबीन को शहीद कराया, तो इसको तो कोई खौफ नहीं था। अब ये जब उनको लाया गया तो हर तरफ बड़ी दहशत फैल गई। लोगों की नजरें अब देख रही थी कि हर कोई गमगीन था कि अब होगा क्या, दिल कांप रहे थे। हसन बसरी ने तलवार देखी, जल्लाद को देखा, चमड़े की चादर को देखा, तो मुस्कुरा दी और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो हज्जाज के सामने लाए गए तो उन के ऊपर एक इत्मीनान था। हज्जाज ने इनकी तरफ देखा तो उस पे हैबत तारी हो गई, गुस्सा चला गया और बड़ी धीमी आवाज में कहने लगा, हसन बसरी मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ, आए तशरीफ लाए मेरे करीब बैठे। बैठने लगे तो कहा जरा और करीब आ जाए, यहां तक अपने साथ तख्त पे बिठा लिया। लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया। हसन बसरी बड़े इत्मीनान से तख्त पे बैठ गए तो हज्जाज ने उनसे दीनी मसाइल पूछना शुरू कर दी, ने हर सवाल का जवाब दिया। हज्जाज बड़ा मुतासिर हुआ, कहने लगा तुम वाकई उलमा के सरदार हो। फिर कीमती इतर मंगवाया और उनको लगाया, फिर हजरत हसन बसरी दरबार से निकले तो हज्जाज का दरबान भी इनके पीछे हो लिया। थोड़ा दूर जाके उसने कहा है, आपने आज जो देखा है ये, उसने सलूक देख के मैं हैरान हूं, मुझे एक बात बताएं, जब आप गिरफ्तारों के दरबार में तशरीफ लाए तो आपके होंठ हरकत कर रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, क्या कह रहे थे? हसन बसरी ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, इलाही तूने मेरे ऊपर बड़ी नेमतें की हैं, हर मुसीबत के वक्त तू मेरा मलजा मेरा मावा है, इलाही सारी मखलूक के दिल तो तेरे कब्जे में है, हज्जाज के गुस्से को मेरे लिए ठंडा कर दे और सलामती वाला बना दे, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया था। और मेरी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और हज्जाज का गुस्सा मोहब्बत में बदल गया। अल्लाह ताला इस तरह अपने प्यारों के लिए देखें कैसे रास्ते निकालता है। इसी तरह जब उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात हुई और यजीद बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान बन गया तो उसने इराक का गवर्नर उमर बिन हबीरा को बना दिया। और एक दिन उमर बिन हबीरा ने हजरत हसन बसरी और आमिर बिन शराहबील को मशवरे के लिए बुलाया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन अब्दुल मलिक को अल्लाह ताला ने खिलाफत दे दी है और उसने मुझे इराक और ईरान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, कभी कभी वो मुझे ऐसे हुक्म देता है जो इंसाफ के नहीं होते, ऐसे हुक्मों से अगर मैं पहलू तही इख्तियार करने का इरादा करूं तो दीनी लिहाज से मेरे लिए कोई जवाज निकलता है, या मुझे मतलब उसका हुक्म मानना ही है जबकि मुझे पता है कि ये इंसाफ नहीं है। अब जाहिर है वो खलीफा था, उसका हुक्म आता था, तो अब इनको पता था ये नहीं सही है उमर बिन हबीरा को, तो अब मैं क्या करूं? तो आमिर बिन शराहबील उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसमें खलीफा के लिए कुछ नरम बातें थी, लेकिन हजरत हसन बसरी खामोश रहे। तो उमर बिन हबीरा ने उनकी तरफ देखा और कहा, ए अबू सईद आपकी क्या राय है? आपने फरमाया, ए इब्ने हबीरा, हो सकता है कि आसमान से एक ऐसा सख्त गीर फरिश्ता नाजिल हो जो कतन अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता, वो तुझे तख्त से उठा के इस महल से निकाल के एक तंग और तारीक कब्र में डाल दे, वहां तो यजीद बिन अब्दुल मलिक नहीं होगा, वहां तो तुझे वो अमल मिलेगा जिसमें तूने अपने और यजीद के रब की मुखालफत की। ए इब्ने हबीरा, अगर तू अल्लाह का हो जाए और हर दम उसकी इताअत में लगा रहे तो वो तुझे दुनिया और आखिरत में यजीद के शर से महफूज रखेगा, और अगर तूने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए यजीद का साथ दे दिया फिर अल्लाह ताला भी तुझे यजीद के जुल्म सितम के हवाले कर दे। ए इब्ने हबीरा, खूब अच्छी तरह जान ले, मखलूक में चाहे कोई भी हो उसका वो हुक्म ना मानना जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी होती। सुभान अल्लाह, यही बातें सब हमारे लिए भी तो हैं कि जब हमें लोगों का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, या औलाद क्या कहेगी, या शौहर क्या कहेंगे, या ससुराल क्या कहेंगे, या फलां क्या कहेगा फलां क्या कहेगा, जबकि उस हुक्म में अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, हम ये सोच के करते हैं कि इन लोगों को राजी कर। देखिए उमर बिन हबीरा के ऊपर तो खलीफा था जो गलत कामों का हुक्म देता था, जो जुल्म का हुक्म देता था, तो क्या प्यारी नसीहत की है हसन बसरी, ये बातें सुन के उमर बिन हबीरा इतना रोए कि आंसुओं से इनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर वो हजरत हसन बसरी की तरफ मायल हुए और इनकी बड़ी इज्जत की। जब ये दोनों बुजुर्ग यहां से निकले तो उस वक्त इनके साथ जो गवर्नर के साथ बातें हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों, हमें हर हाल में अल्लाह ताला को मखलूक पे तरजीह देनी है, हर हाल में। इनके बारे में आता है कि इस कदर ज्यादा खौफे खुदा था हजरत हसन बसरी में कि यजीद बिन हौशब कहते हैं कि मैंने हजरत हसन बसरी और उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा कोई अल्लाह से डरने वाला नहीं देखा। और जहन्नम से तो इतना खौफ खाते थे कि ऐसे लगता था जहन्नम इनके लिए ही बनी है बस। हजरत हसन बसरी जहन्नम का जिक्र करते थे तो रोने लगते थे। किसी ने कहा, आपको कौन सी चीज रुलाती है? फरमाया, मुझे डर है कल ये ना हो कि मैं जहन्नुम में फेंक दिया जाऊं और दुनिया में मुझे इसकी कोई परवाह ही ना हो। फरमाया करते थे, जो मोमिन होता है वो आजी इख्तियार करता है, लेकिन जो जाहिल होता है उसको कोई परवाह ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते थे कि कसम खुदा की, अल्लाह ताला ने बंदों को जहन्नुम से ज्यादा किसी चीज से नहीं डराया। यानी वाकई कि ये डरने वाली ही चीज है कि इंसान इससे डरे। फरमाते थे, जन्नत ने अर्ज की है, बारी ताला, आपने मुझे किसके लिए पैदा किया? फिर इरशाद करते थे कि उस अल्लाह ताला फरमाएगा, उस शख्स के लिए जो मेरी इबादत करता है और मुझसे डरता है। यानी इनके ऊपर इतना खौफे खुदा तारी रहता था, इसके बावजूद कि इतने इबादत गुजार जाहिद मुत्तकी थे। जब जन्नत का बयान होता तो उसके शौक में रोते थे, जब जहन्नुम का बयान होता तो चीखे मार मार के रोते थे। ऐसे लगता था कि जहन्नुम की आवाजें इनके कानों में गूंज रही हैं। फरमाते थे, अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो जन्नत का मुशाहिदा दुनिया में ही कर लेते हैं, यानी उनकी आंखों के सामने रहती है, और ऐसे भी हैं जो जहन्नम में जहन्नमियों के अजाब में मुब्तिला होते हुए उनको दुनिया में देख लेते। अल्लाह अकबर। इनके वाज बहुत ही पुरअसर होते थे। एक दफा लोगों को कहते हैं कि एक आदमी ने अपने भाई से कहा, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यानी तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नुम पे वारिद ना हो, यानी जहन्नुम पे सबको वारिद होना। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें ये खबर पहुंची है कि जहन्नुम में सबको वारिद होना है? उसने कहा हाँ। ने कहा, फिर तुम्हें इसका यकीन है? उसने कहा हाँ। तो उस आदमी ने अपने भाई से कहा कि ये बता कि अगर तुझे इसका यकीन है कि वहां पे वारिद होना है, तो क्या इसका भी यकीन है कि उससे निकलेगा भी तू कि या नहीं? तो भाई ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मुझे इसका नहीं पता कि मैं उसमें से बाहर भी आऊंगा या नहीं। आपको पता है ना, जहन्नुम के ऊपर पुल होगा और उसके ऊपर से सबको गुजरना, कौन पार होगा कौन नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। तो उस आदमी ने कहा, फिर तू आखिरत की तैयारी में सुस्ती क्यों करता है? फिर तू किन खेल तमाशों में पड़ा हुआ? अल्लाहु अकबर। और यही इनकी अपनी भी जिंदगी थी कि अपनी जिंदगी में भी ये इतने ज्यादा केयरफुल थे। कब्रिस्तान में एक आदमी को खाते पीते देखा तो फरमाते हैं, देखो इसको कि मौत का मंजर इसकी आंखों के सामने है, फिर भी इसको खाना सूझता है। इन लोगों के ऊपर हैरत करते थे। जिनको फरमाते थे इनको आखरत के लिए तैयारी का हुक्म मिल चुका है, कूच का नकारा बज चुका है, काफले का अगला हिस्सा चल चुका है, और ये अभी भी बैठे खेल तमाशे में लगे। जब किसी मैयत को देखते थे तो इनका हाल ये होता था जैसे इनकी अपनी वालदा को दफन करने के लिए जा रहे हैं। इतना ज्यादा इनके ऊपर गिरियातारी हो जाता। 80 बरस ये जिंदा रहे, और इनके वाज ऐसे होते थे कि लोग सुनते थे और आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती थी। जो गाफिल लोग होते थे वो सीधे रास्ते पे आ जाते थे। जब इनसे दुनिया के मुतल्लिक पूछा गया तो फरमाया, मुझसे आप दुनिया के मुतल्लिक पूछते हो, सुनो, दुनिया और आखरत की मिसाल, ये बात सुनने वाली बात है, दुनिया और आखरत की मिसाल मशरिक और मगरिब जैसी है, जितना तुम एक के करीब होगे उतना दूसरे से दूर हो जाओगे। ये मतलब ये गोल्डन वर्ड्स हैं। वाकई अगर इंसान देखे, जितना आप दुनिया में मगन होते हैं ना आखरत से दूर हो जाते हैं, जितना आप आखरत की तरफ मगन होते हैं उतना दुनिया से दूर हो जाते हैं। ये दुनिया के खेल तमाशे, पैसा, यहीं की शौक, यहीं के मशगले, यहीं की एंटरटेनमेंट्स, जितना इनके अंदर महव रहते हैं, जितना बाजारों में वक्त गुजारते हैं, जितना यहीं के खेल तमाशों में वक्त गुजारते हैं, आखरत भूली रहती है, इंसान गाफिल रहता है। और जितना आखरत की तैयारी करते हैं ना, फिर ये चीजें भूल जाती हैं, ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, इनकी वो वैल्यू नहीं रहती, इंसान इनमें मस्त नहीं होता। फिर खाता पीता है, पहनता ओढ़ता है, लेकिन फिर ये चीजें उसको मशगूल नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर आखरत सवार हो जाती है। याद रखें, जिसको आखरत का गम लग जाता है ना, उसके लिए दुनिया के गम तो बड़े हल्के लगने लगते हैं। उसको तो लगता है ये क्या गम है, असल तो गम वो है। और जिसको आखरत की फिक्र लग जाती है, उसके लिए दुनिया की फिक्रें तो बहुत छोटी रह जाती। और जिसको आखरत की फिक्र लग जाए, उसको अपनी नेकियां भी बहुत कम महसूस होती। इसीलिए तो ये लोग इतना खौफ खुदा रखते थे, इतना डरते थे, कितनी ज्यादा इनकी नेकियां थी इसके बावजूद, क्योंकि इनको आखरत की फिक्र थी, उसका सही इल्म था। फरमाते थे, मैं दुनिया का क्या बताऊं जिसका आगाज मुशक्कत और तकलीफ है और जिसका अंजाम फना है। इसमें जो हलाल है इसका हिसाब लिया जाना है, और जो हराम है इसके ऊपर सजा दी जाएगी। यानी हलाल कमाओगे तो हिसाब दोगे, हराम कमाओगे तो वैसे ही सजा है। जो इसमें मालदार है वो फितने में मुब्तला होगा, और जो फकीर है वो गम का शिकार हुआ। एक आदमी ने इनसे हाल पूछा तो फरमाया, मेरा हाल क्या पूछते हो, हमने तो अपनी जानों पर जुल्म किए, हमने अपने दीन को कमजोर कर दिया, दुनिया की हिर्स में अपने आप को मोटा कर दिया, हमारे अखलाक बोसीदा हो गए और हमने अपने बिस्तर और कपड़े नए बनवा लिए। यानी अखलाक पुराने हैं, वो बोसीदा हो रहे और कपड़े नए पहनते। हम में से एक ऐसा करता है कि मजे में पड़ा रहता है, माल दूसरों के हड़प करता है, नमकीन के साथ मीठा खाने के लिए मंगवाता है, ठंडे के बाद गरम पीता है, खुश के बाद तर खजूरें खाता है। ए नादान, अल्लाह की कसम, तू अपने दीन के सिवा कुछ भी हजम नहीं कर सकेगा। तेरा पड़ोसी कहाँ है और किस हाल में है तुझे कुछ होश है? तेरी कौम का भूखा यतीम कहाँ है तुझे कोई इसकी परवाह है? वो मिस्कीन कहाँ है जो तेरी तरफ देखता है? वो मखलूक कहाँ है जिसकी निगरानी और देखभाल की अल्लाह ताला ने तुझे वसीयत की है? काश कि तुझे इल्म होता कि तू महज एक गिनती का हिस्सा है, यू आर जस्ट अ नंबर। जब एक दिन का सूरज गुरूब हो जाता है तो तेरी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नसीहत है। तुम एक नंबर ही तो हो, 69, 70, 75, ये नंबर ही है ना, इतनी एज है ना इंसान की, किसी की 50, हर दिन इसमें कमी हो रही है, तो तुम एक नंबर ही तो हो बस, और इससे ज्यादा क्या हो। अल्लाह अकबर, इनकी जब वफात हुई तो बसरे में कोहराम मच गया, इनको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और मरकजी मस्जिद में इनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। सारी जिंदगी ये एक आलिम, मुअल्लिम, दाई, मुबल्लिग, इस तरह से इन्होंने गुजारी। तो सारा शहर इनके नमाज जनाजा में शरीक हुआ था, और उस दिन असर की नमाज जमात से नहीं हुई क्योंकि शहर में कोई नमाज पढ़ने वाला बाकी ही नहीं रह गया था, सब इनके जनाजे के साथ चले गए थे। अल्लाह अकबर। आप देखते हैं कि जितने भी हम अभी तक ताबीन के बारे में बात कर चुके हैं, सब में कितना खौफ खुदा था, कितनी ज्यादा अपनी आखरत की फिक्र थी, उनको कितनी अपनी नेकियां हकीर लगती थी। हम तो थोड़ी सी करके सोचते हैं हमने तो काफी कर लिया, अब हमें क्या डर, अब तो हम बस पार हो गए। ऐसा शैतान ने हमें धोखा दिया हुआ, हमें वो फिक्रें नहीं है जैसी उनको थी। कितनी दफा ऐसे होता है कि हम रात को हमारी आंख खुले और हम रोने लगे सोच के कि अल्लाह पता नहीं मेरा क्या फैसला होगा क्यामत के दिन, अल्लाह तेरे आगे हाजिर होंगी तो पता नहीं मेरी नेकियां बढ़ेंगी कि घट जाएंगी, अल्लाह पता नहीं मेरी किताब मेरे दाहिने हाथ में दी जाएगी कि बाएं हाथ में दी जाएगी, अल्लाह तूने मेरे से अगर सवाल कर लिया ये क्यों किया था तो मैं क्या जवाब दूंगी, अल्लाह अगर मेरे लिए जहन्नम का फैसला हो गया तो मैं किससे फरियाद कर सकूंगी, मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो बेबस होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नेकियां घट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुनाह मेरा अमालनामे में भारी हो जाए, क्या ये डर नहीं लगता हमें। हम बेखौफ होके जिंदगी गुजारना चाहते हैं क्योंकि हमें मगन रहना है यहाँ, हम गफलत में रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी हमें जगाए भी, हम नहीं चाहते, हम गहरी नींद सो रहे हैं और कोई जगाना चाहे भी ना तो हमें बुरा लगता है कि हमें ना जगाओ, हमें ना बताओ, हमें ना डराओ, हमें सोए रहने दो। लेकिन एक दिन तो आंख खुल जाएगी जब मौत का झटका आएगा, अगर आज ना जागे तो उस वक्त तो जागना ही पड़ेगा, लिहाजा क्यों ना आज अपनी तैयारी करें। और इन लोगों ने देखे गुलामों की औलाद हो के भी इल्म हासिल किया और किस लेवल पे पहुंचे कि बड़े बड़े खलीफा, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े लोग इनके आगे बैठते थे और इनसे हिकमत की बातें सीखते थे, नसीहत पूछते थे। इब्ने सीरीन भी आप देख रहे हैं इतने बड़े ताबेई हैं, वो भी गुलामों की औलाद थे लेकिन उनका भी मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है। तो ये इल्म है जो इंसान को बुलंद कर देता है, इल्म के साथ जब अमल आता है। और ये महीना जैसे मैंने आपको बताया था कि ये महीना है ही कुरान का महीना, इल्म जो अल्लाह ताला का इल्म है, जो अल्लाह ताला का कलाम है, इसको सीखें, इसको समझें, इसको वक्त दें। जिस इल्म ने उनको बुलंद कर दिया वही इल्म आपको दुनिया और आखरत में बुलंद कर देगा, यही इज्जतें देने वाला इल्म है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिसको अपने वालदैन से मोहब्बत है वो कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले, क्योंकि जो कुरान वाले होंगे उनके वालदेन को कयामत के दिन इतनी उम्दा पोशाकें पहनाई जाएंगी, ऐसे खूबसूरत कपड़े, ऐसे उम्दा कपड़े, इतने कीमती कपड़े पहनाए जाएंगे, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसकी कीमत का मुकाबला नहीं कर सकता। सारी दुनिया आप दे देना तो उन कपड़ों को नहीं, कीमत को पा नहीं सकते, इतना बड़ा ऑनर उनको दिया जाएगा। तो क्यों ना हम कुरान की तरफ आए, सिर्फ रमजान के लिए नहीं, रमजान के बाद भी, क्योंकि कुरान वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है, अल्लाह वाले किनको कहते हैं? फरमाया अहलुल कुरान, कुरान वाले, वो अल्लाह के खास लोग हैं, यानी वो लोग जो कुरान पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने इसमें अपना वक्त लगाते हैं, इसमें गौर फिक्र करते हैं, यानी अपना टाइम इसको देते हैं। कितना बड़ा ऑनर है कि अल्लाह ताला उनको फरमाता है ये मेरे अहल है, मेरे अहल है ये। तो कुरान से अपना साथ जोड़िए, इसको सीखिए, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं वो जानिए। रमजान के खत्म होने से पहले नियत कर लें कि मैंने इस रमजान के बाद अपना ताल्लुक कुरान के साथ रखना है, इसके साथ जुड़ जाना है। इसमें कई कोर्सेज हमारे पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहें तो कोई भी ज्वाइन कर सकते, फ्री कोर्स है सब। तो लेकिन इसको छोड़ना नहीं है बस। इसी तरह आज का जो हमें अपनी रात को सजाने का है वो ये कि जैसे हम खवातीन रोजा भी रखा तो या वैसे भी थक जाते हैं रात को, तो एक वजीफा ऐसा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बताया था, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के काम कर करके हाथों में इकट्ठे पड़ गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मुझे कोई गुलाम दे दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं। जब आए वापस तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि वो आई थी इस तरह गुलाम लेने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए, रात का वक्त था तो हज़रत अली भी वहां पे मौजूद थे, तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें एक गुलाम से ज्यादा बेहतर चीज ना बताऊं, तुम रात को सोने वक्त सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स और अल्लाह अकबर 34 टाइम्स पढ़ लिया करो, ये गुलाम से ज्यादा बेहतर। हजरत अली फरमाते मैंने सारी जिंदगी ये कभी छोड़ा ही नहीं, हर रात पढ़ के सोता था। ये बुखारी की हदीस है। तो जब भी थक जाए तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे को कर लेंगे, और ये आजमूदा वजीफा है, आप करके देखिएगा थकावट दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे तहारत का ख्याल जरूर रखिएगा, इसलिए कि तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती, और तहारत में आपका लिबास भी है आपका जिस्म भी है, खासुल खास पेशाब के कतरों से बहुत एहतियात करें। गुसल के हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि पीरियड से पाक हुई या जनाबत का गुसल कैसे करना है, और सही तरीके से हम गुसल करें, अपने जो फालतू बाल हैं उनको साफ रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। अल्लाह ताला को तहारत वाले लोग पसंद है, इस वजह से इस नियत के साथ अपने आप को साफ सुथरा रखा करें। आज की जो दुआ है वो इतनी जामे दुआ, इतनी प्यारी दुआ ना, इसलिए कि थोड़े से अल्फाज हैं लेकिन सारी खैर उसमें मांग ली। वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा, ए अल्लाह मेरे सारे ही कामों का जो अंजाम है जो एंड है ना वो अच्छा कर देना, सारे कामों का, दुनिया के जितने काम है, रिस्क रोजी के काम है, बच्चों के काम है, घर के काम है, जो नेकियां है मेरी, जितना कुछ है, एंड जिस चीज का एंड अच्छा होता है ना वो ही अच्छी होती है। एंड खराब हो गया तो चाहे सारी जिंदगी कोई नेकी करता रहे, अगर एंड में जाके उसने खराबी कर दी तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। तो अल्लाह एंड सारे कामों का अच्छा कर दे, उमूरी कुल्लिया, व अजिरना मिन खिज़ये दुनिया व अदाबिल आखर, ए अल्लाह मुझे बचा लेना दुनिया की रुसवाई से, दुनिया की जिल्लत से, बेइज्जती से, और आखरत के अजाब से बचा लेना। अल्लाह हु अकबर, दुनिया की जिल्लत से भी अल्लाह ताला महफूज रखे और आखरत के अजाब से भी, ताकि इंसान दुनिया में इज्जत बड़ी चीज़ है, और दुआ यही करनी चाहिए अल्लाह ताला इस दुनिया में इज्जत के साथ रखे और इज्जत के साथ ही जमीन के नीचे लेकर जाए। और आज की जो आज का जिक्र है ना वो भी इतना खूबसूरत जिक्र है, क्योंकि इस जिक्र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये कलिमात कह दिए तो ये तुम्हें दिन और रात मुसलसल अल्लाह का जिक्र करने से भी ज्यादा अफजल है तुम्हारे लिए, यानी आप पूरा दिन और पूरी रात जिक्र करते रहें और दूसरी तरफ ये कलिमात कह लें तो ये कलिमात ज्यादा अफजल है। अल्लाह हू अकबर, हालांकि पूरा दिन और रात तो हम जिक्र ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इन कलिमात को जरूरी शामिल कर लें, चाहे सुबह शाम की दुआएं जब आप करते हैं तभी आप ये कलिमात भी कह दिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा खलका, अल्लाह ताला की मैं इतनी तारीफ करती हूँ जितनी उसकी मखलूक की गिनती है, वल्हम्दुलिल्लाह मिल अमा खलका, और जितनी उसकी मखलूकात का वजन है, वल्हम्दुलिल्लाह अदद मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों और जमीन में है उनकी गिनती के बराबर, वल्हम्दुलिल्लाह अदद मा आसा किताबु, और मैं इतनी अल्लाह ताला की हमद बयान करती हूँ उन चीजों के बराबर जितनी उसकी किताब में शुमार की गई, मतलब अल्लाह ताला की किताब में लोहे महफूज में तो कितनी चीजें हैं कयामत तक के लिए, वल्हम्दुलिल्लाह मिल अमा आसा किताब, और जित मैं उसकी इतनी तारीफ करती हूँ जितनी उसकी किताब में जो जो भी चीजें हैं उनकी गिनती के वजन के बराबर, उनके वजन के बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह अदद कुल्ली शय, मैं अल्लाह ताला की इतनी हमद बयान करती हूँ जितनी तादाद हर चीज की है, हर चीज की गिनती के बराबर, इन दुनिया कायनात में कितनी चीजें हैं उनकी गिनती के बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह मिल अकुल्ली शय, जितना हर चीज का वजन है ना सब चीजों का वजन मिला लें जितनी वो वजन बनता है, मैं इतनी अल्लाह ताला की हमद बयान करती हूँ। और मुसनद अहमद में है कि जिसने ये कहा फिर इसी तरह सुभान अल्लाह भी इसकी मिसल कहे तो उसके लिए बड़ा अजर है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां पे लिखा हुआ ना उतनी जगह पे आप सुभान अल्लाह ही अदद मा खलका वा सुभान अल्लाह मिल अमा खलका सुभान अल्लाह ही अदद मा फिस्समावात वा, फिर आप इस तरह से आप हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह की जगह सुभान अल्लाह लगा के भी यही जिक्र कर सकते हैं, तो फरमाया इसके लिए बड़ा अजर है। तो इतना ज्यादा आपका तरफ से सुभान अल्लाह हो गया और इतनी ज्यादा आपकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस हाल में दुनिया से लेकर जाए कि वो हमसे राजी हो। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।